संबंध पीछे के तीन श्लोकों में अपनी प्रभावयुक्त विभूतियों का वर्णन करके अब उस विषय का उपसंहार करते हुए भगवान सब प्रकार से जानने योग्य तत्व स्वयं को बताते हैं। सर्वस्य चाहृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन अर्थात संशय आदि दोषों का नाश होता है। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदों के तत्व का निर्णय करने वाला और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। व्याख्या सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। पीछे के श्लोकों में अपनी विभूतियों का वर्णन करने के बाद अब भगवान ये रहस्य प्रकट करते हैं कि मैं स्वयं सब प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। यद्यपि शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि सभी स्थानों में भगवान विद्यमान है तथापि हृदय में वे विशेष रूप से विद्यमान है। हृदय शरीर का प्रधान अंग है। सब प्रकार के भाव हृदय में ही प्रकट होते हैं। समस्त कर्मों में भाव ही प्रधान होता है। भाव की शुद्धि से समस्त पदार्थ क्रिया आदि की शुद्धि हो जाती है। अतः महत्व भाव का ही है। वस्तु व्यक्ति कर्म आदि का नहीं है। वह भाव हृदय में होने से हृदय की बहुत महत्ता है। हृदय सत्वगुण का कार्य है, इसलिए भी भगवान हृदय में विशेष रूप से रहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक मनुष्य के अत्यंत नजदीक उसके हृदय में रहता हूं। अतः किसी भी साधक को मेरी प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए। इसलिए पापी पुण्यात्मा मूर्ख पंडित निर्धन धनवान रोगी निरोग आदि कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी जाति वर्ण संप्रदाय आश्रम देश काल परिस्थिति आदि में क्यों न हो भगवत प्राप्ति का वह पूर्ण अधिकारी है। आवश्यकता केवल भगवत प्राप्ति की ऐसी तीव्र अभिलाषा लगन व्याकुलता की है जिसमें भगवत प्राप्ति के बिना राह न जाए। परमात्मा सर्वव्यापी अर्थात सब जगह समान रूप से परिपूर्ण होने पर भी हृदय में प्राप्त होते हैं। जैसे गाय के संपूर्ण शरीर में दूध व्याप्त होने पर भी वह उसके स्तनों से ही प्राप्त होता है, अथवा पृथ्वी में सर्वत्र जल रहने पर भी वह कुएं आदि से ही प्राप्त होता है। ऐसे ही सूर्य चंद्रमा अग्नि पृथ्वी वैश्वानर आदि सब में व्याप्त होने पर भी परमात्मा हृदय में प्राप्त होते हैं। 13वें अध्याय का 17वां और 18वें अध्याय का 61वां परमात्मा प्राप्ति संबंधी विशेष बात। हृदय में निरंतर स्थित रहने के कारण परमात्मा वास्तव में मनुष्य मात्र को प्राप्त हैं, परंतु जड़ता से माने हुए संबंध के कारण जड़ता की तरफ ही दृष्टि रहने से नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात उनकी प्राप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होते ही सर्वत्र विद्यमान नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व स्वतः अनुभव में आ जाता है। परमात्म प्राप्ति के लिए जो सत्कर्म सत्चर्चा और सत्चिंतन किया जाता है उसमें जड़ का आश्रय रहता ही है, कारण कि जड़ता का आश्रय लिए बिना संभव ही नहीं है। वास्तव में इनका उपयोग जड़ता से संबंध विच्छेद करने में ही है। जड़ता से संबंध विच्छेद तभी होगा जब ये सत्कर्म सच्चर्चा सच्चिंतन केवल संसार के हित के लिए किए जाए, अपने लिए नहीं। किसी विशेष साधन गुण योग्यता लक्षण आदि के बदले में परमात्मा की प्राप्ति होगी, यह बिल्कुल गलत धारणा है। किसी मूल्य के बदले में जो वस्तु प्राप्त होती है वह उस मूल्य से कम मूल्य की होती है, यह सिद्धांत है। अतः यदि किसी विशेष साधन योग्यता आदि के द्वारा परमात्मा प्राप्ति का होना माना जाए तो परमात्मा उस साधन योग्यता आदि से कम मूल्य के सिद्ध हो जाते हैं, जबकि परमात्मा किसी से कम मूल्य के नहीं है। 11वें अध्याय का 43वां श्लोक। इसलिए वे किसी साधन आदि से खरीदे नहीं जा सकते। इसके सिवा अगर किसी मूल्य माने साधन योग्यता आदि के बदले में परमात्मा की प्राप्ति मानी जाए तो ऐसे परमात्मा से हमें लाभ भी क्या होगा, क्योंकि उनसे अधिक मूल्य की वस्तु साधन योग्यता आदि तो हमारे पास पहले से ही है। जैसे सांसारिक पदार्थ कर्मों से मिलते हैं, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति कर्मों से नहीं होती, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति किसी कर्म का फल नहीं है। प्रत्येक कर्म की उत्पत्ति अहम भाव से होती है और परमात्मा प्राप्ति अहम भाव के मिटने पर होती है। कारण कि अहम भाव कृति है, कर्म है, परमात्मा कृति रहित है। कृति रहित तत्व को किसी कृति से कैसे प्राप्त किया जा सकता है? नास्ति कृता कृतेन, मंडूकोपनिषद। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्म तत्व की प्राप्ति मन बुद्धि इंद्रियां शरीर आदि जड़ पदार्थों के द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ता के त्याग से होती है। जब तक मन बुद्धि इंद्रियां शरीर देश काल वस्तु आदि का आश्रय है तब तक परमात्मा का आश्रय नहीं हो सकता। मन बुद्धि आदि के आश्रय से परमात्मा प्राप्ति होगी, यही साधक की मूल भूल है। अगर जड़ता का आश्रय और विश्वास छूट जाए तथा एकमात्र परमात्मा का ही आश्रय और विश्वास हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती। मत स्मृतिर्ज्ञानमपोहनंच, किसी बात की भूली हुई जानकारी का पुनः प्राप्त होना स्मृति कहलाती है। स्मृति और चिंतन दोनों में फर्क होता है। नई बात का चिंतन होता है और पुरानी बात की स्मृति होती है। अतः चिंतन संसार का और स्मृति परमात्मा की होती है, क्योंकि संसार पहले नहीं था और परमात्मा अनादिकाल से है। स्मृति में जो शक्ति है वो चिंतन में नहीं है। स्मृति में कर्तापन का भाव कम रहता है, जबकि चिंतन में कर्तापन का भाव अधिक रहता है। एक स्मृति की जाती है और एक स्मृति होती है। जो स्मृति की जाती है वह बुद्धि में और जो होती है वह स्वयं में होती है। होने वाली स्मृति जड़ता से तत्काल संबंध विच्छेद करा देती है। भगवान यहाँ कहते हैं कि यह होने वाली स्मृति है, ये मुझसे ही होती है। परमात्मा का अंश होते हुए भी जीव भूल से परमात्मा से विमुख हो जाता है और अपना संबंध संसार से मानने लगता है। इस भूल का नाश होने पर मैं भगवान का ही हूँ, संसार का नहीं, ऐसा साक्षात अनुभव हो जाना ही स्मृति है। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। स्मृति में कोई ज्ञान या अनुभव नहीं होता, केवल विस्मृति माने मोह का नाश होता है। भगवान से हमारा वास्तविक संबंध तो है ही, इस वास्तविकता का प्रकट होना ही स्मृति का प्राप्त होना है। जीव में निष्काम भाव माने कर्मयोग, स्वरूप बोध माने ज्ञान योग और भगवत प्रेम माने भक्ति योग, ये तीनों स्वतः विद्यमान है। जीव को अनादि काल से इनकी विस्मृति हो गई है। एक बार इनकी स्मृति हो जाने पर फिर विस्मृति नहीं होती, कारण कि यह स्मृति स्वयं में जागृत होती है। बुद्धि में होने वाली लौकिक स्मृति बुद्धि के क्षीण हो जाने पर नष्ट भी हो सकती है, पर स्वयं में होने वाली स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। किसी विषय की जानकारी को ज्ञान कहते हैं। लौकिक और पारमार्थिक जितना भी ज्ञान है वह सब ज्ञान स्वरूप परमात्मा का आभास मात्र है। अतः ज्ञान को भगवान अपने से ही होने वाला बताते हैं। वास्तव में ज्ञान वही है जो स्वयं से माना जाए। अनंत पूर्ण और नित्य होने के कारण इस ज्ञान में कोई संदेह या भ्रम नहीं होता। यद्यपि इंद्रिय और बुद्धि जन्य ज्ञान में भी ज्ञान कहलाता है, तथापि सीमित अल्प तथा परिवर्तनशील होने के कारण इस ज्ञान में संदेह या भ्रम रहता है। जैसे नेत्रों से दिखने पर सूर्य अत्यंत बड़ा होते हुए भी आकाश में छोटा सा दिखता है इत्यादि। बुद्धि से जिस बात को पहले ठीक समझते थे, बुद्धि के विकसित अथवा शुद्ध होने पर वही बात गलत दिखने लगती है। तात्पर्य यह है कि इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान करण सापेक्ष और अल्प होता है, अल्प ज्ञान ही अज्ञान कहलाता है। इसके विपरीत स्वयं का ज्ञान किसी करण की अपेक्षा नहीं रखता तो वह सदा पूर्ण ही होता है। वास्तव में इंद्रिय और बुद्धिजन्य ज्ञान भी स्वयं के ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, अर्थात सत्ता पाते हैं। संशय भ्रम विपर्य तर्क वितर्क आदि दोषों को दूर होने का नाम अपोहन है। भगवान कहते हैं ये संशय आदि दोष भी मेरी कृपा से दूर होते हैं। शास्त्रों की बातें सत्य या असत्य, भगवान को किसने देखा है, संसारी सत्य है इत्यादि संशय और भ्रम भगवान की कृपा से ही मिटते हैं। सांसारिक पदार्थों में अपना हित दिखना, उनकी प्राप्ति में सुख दिखना, प्रतिक्षण नष्ट होने वाले संसार की सत्ता दिखना आदि विपरीत भाव भी भगवान की कृपा से ही दूर होते हैं। गीतोपदेश के अंत में अर्जुन भी भगवान की कृपा से ही अपने मोह का नाश, स्मृति की प्राप्ति और संशय का नाश होना स्वीकार करते हैं। 18वें अध्याय का 73वां वेदिष्ट सर्वै रहमेव विद्यः, या सर्वै पद वेद एवं वेदानुकूल संपूर्ण शास्त्रों का वाचक है। संपूर्ण शास्त्रों का एकमात्र तात्पर्य परमात्मा का वास्तविक ज्ञान कराने अथवा उनकी प्राप्ति कराने में ही है। यहां भगवान ये स्पष्ट करते हैं कि वेदों का वास्तविक तात्पर्य मेरी प्राप्ति कराने में ही है, सांसारिक भोगों की प्राप्ति कराने में नहीं है। श्रुतियों में सकाम भाव का विशेष वर्णन आने का यह कारण भी है कि संसार में सकाम मनुष्यों की संख्या अधिक रहती है, इसलिए श्रुति सबकी माता होने से उनका भी पालन करती है। जानने योग्य एकमात्र परमात्मा ही है, जिनको जान लेने पर फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। परमात्मा को जाने बिना संसार को कितना ही क्यों न जान ले, जानकारी कभी पूरी नहीं होती, सदा अधूरी रहेगी। सांगोपांगानपि यदि यश्च वेदान अधीयते वेद वेद्यम न जानीते वेद भार वहो ही स। अर्जुन में भगवान को जानने की विशेष जिज्ञासा थी, इसलिए भगवान कहते हैं कि संपूर्ण वेदों और शास्त्रों के द्वारा जानने योग्य मैं स्वयं तुम्हारे सामने बैठा हूं। वेदांत कृत भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं, तीसरे अध्याय का 15वां और 17वें अध्याय का 23वां श्लोक। अतः वे ही वेदों के अंतिम सिद्धांत को ठीक ठीक बताकर वेदों में प्रतीत होने वाले विरोधों का अच्छी तरह समन्वय कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं ही वेदों के यथार्थ तात्पर्य का निर्णय करने वाला हूँ, वेदों का पूर्ण वास्तविक ज्ञाता हूँ। वेद विदेव चाहम, वेदों के अर्थ भाव आदि को भगवान ही यथार्थ रूप से जानते हैं। वेदों में कौन कौन सी बात किस भाव या उद्देश्य से कही है, वेदों का यथार्थ तात्पर्य क्या है इत्यादि बातें भगवान ही पूर्ण रूप से जानते हैं, क्योंकि भगवान से ही वेद प्रकट हुए हैं। वेदों में भिन्न भिन्न विषय होने के कारण अच्छे अच्छे विद्वान भी एक निर्णय नहीं कर सकते। दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। इसलिए वेदों के यथार्थ ज्ञाता भगवान का आश्रय लेने से ही वेदों का तत्व जान सकते हैं, श्रुति भी प्रतिपत्ति से मुक्त हो सकते हैं। इस 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने संसार वृक्ष को तत्व से जानने वाले मनुष्य को वेदवित कहा था। अब इस श्लोक में भगवान स्वयं को वेदवित कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि संसार के यथार्थ तत्व को जान लेने वाला महापुरुष भगवान से अभिन्न हो जाता है। संसार के यथार्थ तत्व को जानने का अभिप्राय है संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है और परमात्मा की ही सत्ता है। इस प्रकार जानते हुए संसार से माने हुए संबंध को छोड़कर अपना संबंध भगवान से जोड़ना, संसार का आश्रय छोड़कर भगवान के आश्रित हो जाना। प्रकरण संबंधी विशेष बात। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्यायों में भिन्न भिन्न रूपों से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। 7वें अध्याय में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक सृष्टि के प्रधान प्रधान पदार्थों में कारण रूप से 17 विभूतियों का वर्णन करके भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता और सर्वरूपता सिद्ध की है। 9वें अध्याय के 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक क्रिया भाव पदार्थ आदि में कार्य कारण रूप से 37 विभूतियों का वर्णन करके भगवान ने अपने को सर्वव्यापक बताया है। 10वें अध्याय का तो नाम ही विभूति योग है। इसमें 4थे और 5वें श्लोक में भगवान ने प्राणियों के भावों के रूप में 20 विभूतियों का और 6ठे श्लोक में व्यक्तियों के रूप में 25 विभूतियों का वर्णन किया है। फिर 20वें श्लोक से 39वें श्लोक तक भगवान ने 82 प्रधान विभूतियों का विशेष रूप से वर्णन किया है। इस 15वें अध्याय में 12वें श्लोक से 15वें श्लोक तक भगवान ने अपना प्रभाव बतलाने के लिए 13 विभूतियों का वर्णन किया है। वो विभूतियां इस प्रकार है: सूर्य में तेज, चंद्र में स्थित तेज, अग्नि में स्थित तेज, पृथ्वी की धारणा शक्ति, चंद्रमा की पोषण शक्ति, वैश्वानर अग्नि, हृदय स्थित अंतर्यामी, स्मृति, ज्ञान, अपोहन, वेद, वेद्य, वेदों का कर्ता और वेदों को जानने वाला। उपर्युक्त 4 अध्यायों में भिन्न भिन्न रूप से विभूतियों का वर्णन करने का तात्पर्य है कि साधक को वासुदेव है सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है, इस तत्व का अनुभव हो जाए। इसलिए अपनी विभूतियों का वर्णन करते समय भगवान ने अपनी सर्वव्यापकता को ही विशेष रूप से सिद्ध किया है। जैसे मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति, 7 का 7, मुझसे बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई भी महान कारण नहीं है। सत सच्चा हम अर्जुन, नौका 19, सत और असत सब कुछ मैं ही हूं। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, 10:8, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। न तदस्ति बिना यस्यान मया भूतम चराचरम, 10:39, चर और अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो मुझसे रहित हो, अर्थात चराचर सब प्राणी मेरे ही स्वरूप है। इस प्रकार इस 15वें अध्याय में अपनी विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट है, 15:15, मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित हूं। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण प्राणी पदार्थ परमात्मा की सत्ता से ही सत्तावान हो रहे हैं, परमात्मा से अलग किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। प्रकाश के अभाव में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। आंखों से किसी वस्तु को देखने पर पहले प्रकाश दिखता है, उसके बाद वस्तु दिखती है, अर्थात हर एक वस्तु प्रकाश के अंतर्गत ही दिखती है, किंतु हमारी दृष्टि प्रकाश पर न जाकर प्रकाशित होने वाली वस्तु पर जाती है। इसी प्रकार यावन मात्र वस्तु क्रिया भाव आदि का ज्ञान एक विलक्षण और अलुप्त प्रकाश ज्ञान के अंतर्गत होता है, जो सबका प्रकाशक और आधार है। प्रत्येक वस्तु से पहले ज्ञान रहता है, वो ज्ञान स्वयं प्रकाश परमात्म तत्व ही है। अतः संसार में परमात्मा को व्याप्त कहने पर भी वस्तुतः संसार बाद में है और उसका अधिष्ठान परमात्मा पहले है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि पहले परमात्म तत्व दिखता है, बाद में संसार। परंतु संसार में राग होने के कारण मनुष्य की दृष्टि उसके प्रकाशक परमात्मा पर नहीं जाती। परमात्मा की सत्ता के बिना संसार की कोई सत्ता नहीं है, परंतु परमात्मा सत्ता की तरफ दृष्टि न रहने से सांसारिक प्राणी पदार्थों में राग या सुखाशक्ति रहने के कारण उन प्राणी पदार्थों की पृथक सत्ता प्रतीत होने लगती है और परमात्मा की वास्तविक सत्ता नहीं दिखती। यदि संसार में राग या सुखाशक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए तो तत्व से एक परम सत्ता ही दिखने या अनुभव में आने लगती है। अतः विभूतियों के वर्णन का तात्पर्य यही है कि किसी भी प्राणी पदार्थ की तरफ दृष्टि जाने पर साधक को एकमात्र भगवान की स्मृति होनी चाहिए, उसे प्रत्येक प्राणी पदार्थ में भगवान को ही देखना चाहिए। 10वां अध्याय 41वां श्लोक। वर्तमान में समाज की बड़ी विचित्र दशा है, प्राय सब लोगों के अंतःकरण में रुपयों का बहुत ज्यादा महत्व हो गया है। रुपये खुद काम आते नहीं, प्रत्युत उनसे खरीदी गई वस्तु ही काम में आती है, परंतु लोगों ने रुपयों के उपयोग को खास महत्व न देकर उनकी संख्या की वृद्धि को ही ज्यादा महत्व दे दिया। इसलिए मनुष्य के पास जितने अधिक रुपये होते हैं वह समाज में अपने को उतना ही अधिक बड़ा मान लेता है। इस प्रकार रुपयों को ही महत्व देने वाला व्यक्ति परमात्मा के महत्व को समझ ही नहीं सकता। फिर परमात्मा की प्राप्ति के बिना रहा न जाए ऐसी लगन उस मनुष्य के भीतर उत्पन्न हो ही कैसे सकती है। जिसके भीतर यह बात बैठी हुई है कि रुपयों के बिना रहा नहीं जा सकता अथवा रुपयों के बिना काम नहीं चल सकता, उसकी परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि हो ही नहीं सकती। वह ये बात समझ नहीं सकता कि रुपए के बिना भी अच्छी तरह काम चल सकता है। जिस प्रकार व्यापारी को माल लेने माल देने आदि व्यापार संबंधी प्रत्येक क्रिया में धन ही धन दिखता है, उसी प्रकार परमात्म तत्व के जिज्ञासु को प्रत्येक वस्तु क्रिया आदि में तत्व रूप से परमात्मा ही दिखते हैं। उसको ऐसा अनुभव हो जाता है कि परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व है ही नहीं और हो सकता भी नहीं। मार्मिक बात, अर्जुन ने 14वें अध्याय में गुणातीत होने का उपाय पूछा था। गुणों के संग से ही जीव संसार में फंसता है, अतः गुणों का संग मिटाने के लिए भगवान ने यहां अपने प्रभाव का वर्णन किया। छोटे प्रभाव को मिटाने के लिए बड़े प्रभाव की आवश्यकता होती है, अतः जब तक जीव पर गुणों का प्रभाव है तब तक भगवान के प्रभाव को जानने की बड़ी आवश्यकता है। अपने प्रभाव का वर्णन करते हुए भगवान ने इस 15वें अध्याय के 12वें से 15वें श्लोक तक यह बताया है कि मैं ही संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता हूं, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके सब प्राणियों को धारण करता हूं, मैं ही पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न करके सबको पुष्ट करता हूं, जब मनुष्य उस अन्न को खाता है तब मैं ही वैश्वानर रूप से उस अन्न को पचाता हूं और मनुष्य में स्मृति ज्ञान और अपोहन भी मैं ही करता हूं। इस वर्णन से सिद्ध होता है कि आदि से अंत तक, समष्टि से व्यष्टि तक की संपूर्ण क्रियाएं भगवान के अंतर्गत उन्हीं की शक्ति से हो रही है। मनुष्य अहंकारवश अपने को उन क्रियाओं का कर्ता मान लेता है, अर्थात उन क्रियाओं को व्यक्तिगत मान लेता है और बंध जाता है। परिशिष्ट भाव, इस अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने जो बात कही थी उसका उपसंहार इस श्लोक में करते हैं। पहले के 3 श्लोकों में भगवान ने प्रभाव और क्रिया रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, पर इस प्रस्तुत श्लोक में स्वयं अपना वर्णन करते हैं। तात्पर्य यह है कि इस श्लोक में स्वयं भगवान का वर्णन है। आदित्यगत, चंद्रगत, अग्निगत अथवा वैश्वानरगत भगवान का वर्णन नहीं है। मूल में एक ही तत्व है, केवल वर्णन करने में फर्क है। पहले ममैवांसो जीवलोके पदों से यह सिद्ध हुआ कि भगवान अपने हैं, और यहां सर्वस्य चाहम हृदिसन्निविष्ट है पदों से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने में है। भगवान को अपना स्वीकार करने से उनमें स्वाभाविक प्रेम होगा, और अपने में स्वीकार करने से उनको पाने के लिए दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं रहेगी। अपोहनम पद का अर्थ है अपगत ओहनम, अर्थात संशय का निवारण। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, अर्थात निष्कर्ष, निचोड़। उभयोरपि दृष्टोन्तः 2:16। भगवान कहता है कि वेद अनेक है पर उन सब में जानने योग्य मैं एक ही हूं, और उन सबको जानने वाला भी मैं ही हूं। तात्पर्य यह है